ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जुहामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नहि माम्। ब्रज प्रेम को समझने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है। भक्ति राज्य में सबसे पहले श्रद्धा होता है, श्रद्धा से आरंभ होता है भक्ति राज्य। श्रद्धा दो प्रकार की, एक लौकिकी एक पारमार्थिकी श्रद्धा है। साधारण रूप में एक दूसरे के प्रति हम लोगों की जो श्रद्धा होती है वो लौकिकी होती है, थोड़ी सी बातों में ही अनबन होकर के वो श्रद्धा समाप्त हो जाती है। पारमार्थिक जो श्रद्धा होती है वो सहजी नहीं नष्ट होगी, नहीं होगी, वो पूर्व जन्म की सुकृति से होती है और साधारण चीज उत्पन्न नहीं होती है, वो भगवत कोई संबंधी वस्तु से होती है। जैसे किसी साधु संत की कोई यथार्थ में सेवा की और साधु संत भी यथार्थ, भगवती गंगा जमुना भागवत के संपर्क में आए और कोई संत नाम कर रहा हो उसको श्रवण करे, भगवान की लीला कथाओं को कुछ अभी रुचि नहीं है तभी सुन लिया, इससे जो श्रद्धा होती है वो कोमल बड़ी श्रद्धा होती है, किंतु वह इतनी पुष्ट हो जाती है कि उसको पारमार्थ की श्रद्धा नाम दे देते हैं। उसकी डिफिनेशन क्या है श्रद्धा की? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्प कर्म कृत है। कृष्ण का भजन करने से, नाम करने से, हरि कथा सुनने से अवश्य एम एव ही अवश्य अवश्य हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमारा सब कुछ करना जीवन का समाप्त हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास हो उसको कहते हैं श्रद्धा। समझ रहे हैं? श्रद्धा शब्द से वो दृढ़ विश्वास कि कृष्ण की भक्ति करने से, राम की भक्ति करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और कुछ करना बाकी हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा, ये कहलाती है श्रद्धा। ये कैसे हिलेगी? ये श्रद्धा नहीं हिलती, ये बड़ी मुश्किल है हिलना। हिल सकती है कोई दो एक ऐसी स्थितियां हैं, अपराध यदि भ्रम से बन जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, जैसे गरुड़ जी को हो गया गीता में रामायण, तो वैसे में हो सकता है, किंतु बड़ी अचल हिमालय जैसी ये होती है। उसका लक्षण क्या है उस श्रद्धा का? आंतरिक लक्षण जो है वो वस्तु ये है, कृष्ण सेवा की वासना, भगवत सेवा की वासना। जब हृदय में ये सुन करके, संतों से भागवत सुन करके, ये सब परिभाषाएं बतला रहे हैं, खूब ध्यान से सुनेंगे, ये साधारण चीज नहीं है। तुम भी बेटी बैठ जाओ और एक मन से सुनो, जितना थोड़ा सा आ जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा तुम लोगों का और जीवन बन जाएगा। साधारण वक्ता लोग ये सब चीज नहीं बतला सकते हैं क्योंकि गुरुमुखी उनकी विद्या नहीं है, वो बस रुपया कमाने का बस सीखा। तो आंतरिक श्रद्धा उसको कहते हैं जब साधु संतों से, भागवत सुनने से, रामायण पुराण शास्त्र सुनने से हृदय में भगवान की सेवा की वासना होती है, मैं भगवान की सेवा करूंगा हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब उसको शास्त्रों में, भगवान में और जो भगवत संबंधी वस्तु है उसमें श्रद्धा ऊपर से दिखती है। किंतु असल में है वो किस लिए? कृष्ण सेवा की वासना के वजह से। ये तो श्रद्धा का स्वरूप हुआ। जब श्रद्धा ही ऐसी है तो उससे जो चीज पैदा होगी ना बहुत ऊपर की। साधु संग किसको कहते हैं? संग माने होता है संग, ग सम्यक रूप से गमन करना, जो उसका चरित्र है, जैसे उपदेश है, जैसे जीवन में क्रियाएं हैं, भगवान की प्रति चेष्टाएं हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे। नकल करना बुरी बात है, कुछ कर रहा है उसको नकल कर रहे हैं, ये बुरी बात हुई ना? ये बुरी बात है, ये किसी का नकल नहीं करना है, अनुसरण करेंगे अपनी अवस्थानुसार, उसको समझ करके वैसा ही हम करेंगे। तो ऐसा हम अनुसरण करेंगे तो हम इसको किसको क्या बतला रहे हैं? साधु संग किसको कहते हैं? सम्यक रूप से गमन, उसके जो वो करता है उसको अनुसरण करो, नकल मत करो। एक आदमी था तो वो गुरु पास में एक शिष्य था, तो शिष्य को कहा तुम हम जो करते हैं वो समझ करके करता है, तो हाँ समझ करके करते हैं, तो ठीक है तो तुम करो समझ करके करना। तो उसकी परीक्षा के लिए उसने क्या किया, पहले ऐसे नाक किया और फिर ऐसे किया, तो उसने भी देख करके ये तो गुरु ऐसा कर रहा है, ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो फिर उसने अपना आसन लिया और लेकर के ऐसे 3 बार घुमाया, तो उसने भी किया तो समझ गया जी ये बेवकूफ है, ये कुछ समझता नहीं, उसमें घुमाने की क्या जरूरत है, किंतु वो घुमाया। तो बेवकूफ जो डिसाइपल होते हैं, आदमी होते हैं जिनको श्रद्धा ऐसी नहीं, वो ऐसे रहे। तो ऐसा नहीं, किसी चीज को थ्योरी समझो और समझ करके उसको फॉलो करो। तो ये साधु संघ कैसे चलते हैं, कैसे भगवान का भजन करते हैं, रात में कैसे सोते हैं, कैसे जगते हैं, ये सब विचारे इसको कहना चाहिए। ये साधु हरि कथा सुनता है, उसका पालन करता है जीवन में, वो बड़ा हो जाता है, उसको भक्ति हो जाती है। साधन किसको कहते हैं? साधन सभी साधन तो कर रहे हैं नहीं, अभी साधन का आभास हो रहा है, साधन नहीं हो रहा है। साधन कब होगा? जब कोई उद्देश्य रहेगा भक्ति का, हमको भाव भक्ति चाहिए और उसको उद्देश्य करके जब हम करेंगे। भाव भक्ति कैसी? जैसे बिल्ल मंगल को हो गई ना बिल्ल मंगल को याद जानते हैं, एक बेस्या के पीछे चल रहा था, तो बेस्या ने एक दिन दूधकार दिया जी हमारे इस हर चाम रक्त के और टट्टी भरे शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम है, भगवान के प्रति होता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, बस एकदम बदल गया और वो वृंदावन चला गया, अपनी आंख को भी फोड़ लिया जी आंखें नहीं रहेंगी तो ये संसार का रूप नहीं दिखेगा, एकदम ऐसा, और अंत में भगवान को पाया। वैसे भाव महाप्रभु के भक्तों में देखा जाता है, उस भाव को पाने के लिए ये क्यों उनको आंखों से आंसू गिरने लगती है भगवान की कथाओं को सुन करके, गोवर्धन को देख करके, जमुना को देख करके उनके अष्टसात्विक विकार होने लगते, क्यों? वो जमुना जी को देखते ही 7 बार प्रणाम करते हैं, क्यों? तो ये सब भाव के लिए, कृष्ण की भक्ति में भाव भक्ति के लिए जब करते हैं तो उसको साधन कहते हैं। उसी तरह से प्रेम किसको कहते हैं, अभी तो और बहुत मैंने छोड़ दिया, मैंने साधारण रूप में बतला रहा हूं, प्रेम किसको कहते हैं। जब समय आने पर भी ऐसा कोई समय जाए जे प्रेम का बंधन टूट जाए तो वो और मजबूत हो जाता है। फिर से समझिए, कृष्ण से हमारे प्रेम बंधन का कारण जो प्रेम अब नष्ट हो जाएगा, ऐसे कारण भी बहुत से। हम चाहते थे हमारा बेटा मरे नहीं, अब मर गया तो ऐसे तो मालूम होता है ये कारण बस उसने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, पाठ भक्ता में जाना छोड़ दिया, ये बेकार की फालतू चीज है। किंतु ऐसी स्थिति में भी वो प्रेम का बंधन और पक्का हो जाए, जैसे गोपियों के लिए एक बार भी शाखा जी कह रही हैं राधा जी को, अरे तू बड़ी मूर्ख है सखी, आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, एक तो काला कल उठा उसको कोई पूछता नहीं, और दूसरी बात उसको कितनी स्त्रियों में आसक्ति है जानती हो, ब्रज में ऐसी कोई अछूती नहीं है जिसके प्रति उसकी नजर न गई हो, अब तुम उसे प्यार कर रही हो, अपना प्रेम लौटा लो, किसी अच्छे युवक से कहो जो ब्रज में अच्छा हो, शालीन हो और अच्छे विचार का हो, उसे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो वो क्या बोलती हैं, जो वो बुरा हो भला हो कुरूप हो अगली हो हजारों स्त्रियों से प्रेम करता है जैसा भी हो, वो हमारा ही प्राण प्रियतम है, मैं बदल ले तू हमको ये मत करो, ठगो मत। ये इसी तरह से जब प्रेम बंधन नष्ट होने का हो और प्रेम बंधन बढ़ता जाए और बढ़ जाए तो ये क्या कहते हैं, प्रेम कहते। किंतु दूसरे में अब भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे में वो प्रेम बढ़ता है कि घटता है ये विचार नहीं है, वो बढ़ ही नहीं सकता, मृत्यु के बाद में तो समाप्त होना है, और थोड़ी सी ठकर बकर वो जरूर होगी ही, जरूर होगी, वो पूर्णिता को प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। अरे और की तो बात क्या, लक्ष्मी जी का का सत्यभामा जी का रुक्मिणी का और सीता जी का भी प्रेम पूरा अखंड रूप में राम पर और उधर कृष्ण पर द्वारकाधीश पर नहीं हुआ, अखंड प्रेम नहीं हुआ। कहिए कैसे, जब शादी हुई तो अखंड प्रेम और जब एक बच्चा हुआ तो वो क्या हुआ, वो प्रेम उनका बट गया, रुक्मिणी का एक अपने बेटे में चला गया अधिक और कुछ घर के कामों में और कुछ कृष्ण में, 10 बेटे हुए एक बेटी हुई तो अब कृष्ण के भाग में कितना पड़ा उनका प्रेम, 10, 11, 12 भाग पड़ा। सीता जी को जब तक नहीं अखंड प्रेम, और जब लौकुश हो गए ना तो उनका प्रेम कैसा हुआ, बट गया लव और कुश में, उसको लेकर के जीवित रहती थी और राम के लिए कोई आधार नहीं था, अयोध्या में बिल बिलाते रहते थे। तो इस तरह से अखंड प्रेम यदि देखा जाए तो एकमात्र गोपियों में ही है। तो ये कृष्ण के साथ में संबंध नष्ट होने के लिए समय भी आए प्रेम बंधन नष्ट में, उसी प्रकार से लौकिक रीति में भी होना चाहिए। विवाह होने के बाद में प्रेम के टूटने का संबंध आ सकता है, किंतु उस समय भी वो प्रेम विवाह संबंध न टूटे तो वो विवाह ठीक है, उसको शास्त्र मान्यता देता है। और विवाह के बाद में दोनों में थोड़ी सी अनबन हुई है और क्या कहते हैं आजकल डाइवोर्स, तो उस प्रेम का मूल्य क्या है, वो तो गधों और कुकर का प्रेम प्रेम है, उसे सुकरियां अच्छी हैं और सुकर गधे उस प्रेम से। तो विवाह तो ऐसे लड़की को भी एहसास होना चाहिए, लड़का को भी एहसास होना चाहिए, ये प्रेम का बंधन नष्ट होने पर भी कारण आने पर भी तस्से बसने ऐसा होना चाहिए। तो ये सब प्रेम की परिभाषा। अब इस जो प्रेम की परिभाषा हमने दी और उसके बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग की, तो अब परिभाषाएं और सिर्फ कितनी है। तो इनको विचार करके ब्रज का प्रेम में भागवत सुनेंगे, और जिसको ये सब का ज्ञान नहीं भागवत सुन करके भी कुछ समझ में नहीं आएगा, रामायण भी सुन करके कुछ नहीं आएगा। प्रेम भी दो प्रकार का, एक मर्यादामय और एक माधुर्यमय। माधुर्यमय और कैसे, जैसे हनुमान जी अर्जुन है, अर्जुन ने कहा सखा हमारे घोड़ों को रथ को आगे बढ़ा करके बीच में ले जाओ, सखा को बोले। और कभी अर्जुन के रथ को सजाते हैं कृष्ण, और घोड़ों को जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं, और घोड़े थक जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मलते हैं उनके पैर को घोड़ों के, और मल करके ठीक करके और पीठ थपथपा करके उनको ताजा बनाते हैं, जो घोड़े चढ़ना जानते हैं वो जानेंगे, बिना उनका पैर दबाए हुए। कभी कभी थक जाते हैं घोड़े तो उनको दबा देते हैं कृष्ण, अर्जुन के ये खातिर कर रहे हैं। किंतु जब विश्व रूप देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले आज से मैं तुमको कभी कदापि सखा नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र नहीं, हमारे प्रभु के प्रभु, विश्व ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता ब्रह्मा सब के तुम ईश्वर हो, आज से मैं नहीं, मैंने जो कहा क्षमा कीजिए, अब फिर से ऐसा नहीं कहूंगा, सखा नहीं कहूंगा, मित्र नहीं कहूंगा, कोई सेवा नहीं लूंगा। तो ये जब ऐश्वर्य भाव होता है तो ये है, जब लोक में ऐसा कोई चीज न हो जिसके बराबर, वैसी चीज कोई हो जिसकी कोई तुलना दूसरी से लौकिक चीज से नहीं हो सके, और ऐसा कोई ऐश्वर्यमय प्रेम हो तो उसको मर्यादा प्रेम कहते हैं। राम सीता का, राम के प्रति, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, और ये क्या नाम विभीषण का, सुग्रीव का, ये सब का प्रेम मर्यादा में था। राम के पास में आकर के बैठ जाएंगे, बराबरी पर नहीं बैठेंगे, हनुमान बैठेंगे आ जाओ बेटा बैठ जाओ यहाँ मेरी गोद में, आएगा लक्ष्मण जी आएंगे हाथ जोड़ करके, भरत जी हाथ जोड़ करके, सीता जी भी हाथ जोड़ करके आएंगे, तब उनके साथ में बाएं तरफ में किसी तरह से बैठ, बड़ी सावधानी से। ये मर्यादामय प्रेम है, ये कुछ कमी है इसमें। और ब्रज के सखा लोग हैं कृष्ण का, जो उधर बैठ तो क्या करेगा वो, वो गला पड़कर ऊपर में उनके कंधे पर बैठ जाएगा और अरे सारे तेरे ये सब करेगा, अरे सारे जानते हैं किसको मना करेंगे, किसको कोई मानेगा, कोई भी सखा मधुमंगल मानेगा? श्रीधाम कहता है तुम्हारे बाप की केवल 9 लाख गाय हैं और हमारे बाप की है कितनी, 11 लाख गाय है, तुम हमसे किस विषय में बड़ा है, है? बड़ा हमारा हमको देखने वाला है, अभी तुमको पछाड़ दूंगा तुमको, तुम ऐसे तैसे मत समझना। ये प्रेम और गोपियों का सहलिया करें ये मान नहीं रही, अपनी बंसी मुरली और ये सब उनके चरणों में दे दो। तो कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं स्मर गर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पौलम उदार, आप बड़ी उदार हैं, कृपा करके अपने चरणों को हमारे सिर पर विभूषण भूषण के रूप में धारण कीजिए, ऐसा कौन कहेगा। ये प्रेम का परिपक्व, प्रेम की परिपक्व दशा है, ये ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी, न द्वारका मिलेगी, न अयोध्या में मिलेगी, न विश्व ब्रह्मांड के कहीं भी नहीं मिलेगी, ब्रज में ये सब प्रेम है। मैं इसको दिखलाना चाहता था किंतु समय नहीं है, मैं क्या करूं, 1 घंटा भागवत की पोथी कहने से होता है, ऐसे तो हम समझते कि 10,000 वर्ष में पूरी नहीं होगी भागवत, 1-2 दिन की। मेरी इच्छा थी जो 2-4 कथाएं सुनाऊंगा, तो कहां से सुनाऊं बेटी, समय कहां, यही तो 10 मिनट में समय हो जाता, देखो 1 घंटा हो गया। अब इसी तरह से सुनो, ये अभी परिभाषा बनाया, तुम्हारे अंदर में ऐसी श्रद्धा हो निष्ठा हो कैसी, प्राण जाए बरी वचन नहीं जाए, प्राण चले जाए किंतु वचन, ये सब है निष्ठा। रुचि है, रुचि मैंने क्या एकदम लग जाती है, आसक्ति और ऐसे बिना उसके रह नहीं सकते, मैया के दूध के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम और उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकते, इसकी भी जरूरत है। आसक्ति से बढ़कर के भाव है, बड़ी बड़ी सब परिभाषाएं हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो विश्व में ऐसा ग्रंथ, यदि प्रेम का पाठ पढ़ना हो ढाई अक्षर पढ़े इस पंडित हो, ढाई अक्षर ही प्रेम का है, इसको जो पढ़ने वाला पंडित है, नहीं तो सब बेवकूफ है। उद्धव जी को गोपियों ने कहा पढ़ा प्रेम, उद्धव जी ने से पूछा गोपियों ने प्रेम पढ़ा अढ़ाई अक्षर वाला, हाँ तो हमने पढ़ लिया है, पूरा पढ़ लिया है, पढ़ लिया तो बताएगा जी क्यों, अच्छा बतलाओ तो उनका और हमारा प्रेम निस्वार्थ था तो ये कैसे टूट गया, जो असल प्रेम होता है वो टूटता नहीं है, अभी बतलाया ना, कारण होने पर भी और पक्का हो जाता है। तो अब कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए और वहां पर 16,000 एक रानियों से शादी कर ली और हमें भूल गए और प्रेम टूट गया, तो तू बतला तो, कहे ये तो मेरी समझ में नहीं आया ना? वो भी नहीं उत्तर दे सके, तो तुमको प्रेम का भी पाठ पढ़ा रहे हैं हम, ब्रज से लौटे हैं हम लोग, अभी आए हैं थोड़ा सा, हम जितना पढ़े हैं लोअर प्राइमरी तक मैं पढ़ा, तो आप लोगों को पढ़ाने की चेष्टा करूंगा। अब इसी के आधार पर, अब एक मथुरा में फल बेचने वाली थी, फल बेचने वाली थी, और वही रोज गोपियों से इधर उधर से क्या सुनती थी और कैसा उसको प्रेम हुआ, इसके संबंध में पुरंडरीक ब्रह्मचारी जी कुछ बोलिए, मैं तो परी आध घंटा से अधिक बोल गया, बोल तब इसके बाद में फिर मैं बतला, खड़े हो जाओ, ये ले लो कोई। सावधानी से सुनो, जब प्रेम किसको कहते हैं और प्रेम कैसे होता है, अभी सुना है इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है,
मेरी परीक्षा का समय, आप सब लोग आशीर्वाद करें महाराज जी के पास, हम लोग का अति सौभाग्य है महाराज जी से उनके मुखारविंद से ये सब दिव्य कथाएं और तत्व सिद्धांत हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
ये भाई सिद्धांत है भक्ति का, इसको याद रखना, यदि भक्ति में आग्रह बढ़ना है तो, अन्य तब भूल जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद नहीं फिर क्या कैसे कसेगा, तो ये सब फॉर्मूले हैं।
महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि वे हमें ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम इन सब कथाओं को अपने हृदय में धारण कर सके और तदनुरूप अपने आचरण को काय मन वचन को इन कथाओं की सेवा में लगा सके। तो ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म उपरांत हमने कुछ एक दैत्यों के वध की कथाएं सुनी, पूतना का वध, बकासुर, अघासुर इत्यादि ये सब चीजें हुई, और दामोदर लीला भी हमने महाराज जी के मुख से पिछले वर्षों में श्रवण की है। तो इस प्रकार से कृष्ण छोटे से नन्हे से बालक के रूप में वे तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं करते हुए समस्त ब्रजवासियों का मन मोहन करते हैं। नंद बाबा यशोदा
अभी अधिक चलने फिरने वाले नहीं हुए थे, बस नंगटे नंगटे घूमते थे और छोटे छोटे बालकों, अभी अधिक नहीं, घर से बाहर अधिक नहीं जाते थे।
तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, कभी मक्खन चोरी करते हैं, कभी दही की मटकी फोड़ देते हैं, और कभी किसी घर में जब मक्खन चुराने जाते हैं और मक्खन नहीं मिलता तो उस गोपी का जो छोटा सा बालक है उसको चींटी मार करके रुला देते कि हमें मक्खन क्यों नहीं दिया, और उन्हें पता रहता है कहाँ पे मक्खन रखा हुआ है, कहीं ऊंचा रखा हो तो किसी ना किसी प्रकार से कुछ सीध रख करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं तो एक सखा के ऊपर एक दूसरे सखा के ऊपर इस प्रकार से करके किसी ना किसी प्रकार से मक्खन लेंगे ही लेंगे, खुद भी खाएंगे बंदर को भी खिलाएंगे। और जितनी भी गोपियां हैं हृदय में तो उन्हें बहुत आनंद होता है कि कन्हैया इस प्रकार से आकर के मधुर मधुर लीलाएं करके उनके मन का मोहन करके ले जाते हैं, बल्कि वे चाहती हैं कि हमारे घर में कब नंदलाला आएगा और इस प्रकार से मक्खन चुरा के ले जाएगा। मक्खन की कमी है शायद कृष्ण के घर में, है ना? नहीं, क्यों? 11 लाख 9 लाख गाय, तो 9 लाख गाय कैसी गाय है वहां पर? स्वयं ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, सुरभि रवि पालयंतम, वे गाय जो इच्छा करे वही देने वाली है, केवल दूध देंगी ऐसी बात नहीं है, जो चाहे आप वही मिलेगा।
और जितना दूध लाखों करोड़ों मन देने वाली है,
और स्वयं यशोदा मैया और ब्रजवासी लोग उन गायों के दूध के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तु निर्माण करके ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त रहते हैं, करते हैं, सेवाएं करते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या जरूरत है उनको कि वो घरों घरों में जाएं और मक्खन चुराएं, दही की मटकी फोड़ें, प्रेम प्रेम के मुख्य है नंदलाल। और यही भाव गोपियों को भी आकर्षित करता है, वो चाहती है कि ऐसे कब कन्हैया हमारे घर में आएंगे और इन मधुर लीलाओं को देखने को हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन बाहर से क्या करती है, बाहर से आती है और यशोदा मैया के पास आकर के उलाहना देती है कि देखो तुम्हारा बालक इतना छोटा है लेकिन कैसा है, बम का गोला है, पता नहीं चलता कब किधर से आता है और क्या करके चला जाता है, और तुम सोचती है बहुत भोला है, किंतु भोला नहीं है। तो इस प्रकार से वो यशोदा मैया को आकर के बहुत प्रकार से कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें बोलती हैं और अनंत कथाएं हैं, छोटी छोटी मधुर मधुर लीलाएं, किंतु इन लीलाओं का श्रवण करें तो चित्त कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं। खैर, इन सब लीलाओं की बहुत प्रसिद्धि हुई चारों तरफ ब्रज में, कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन, उनकी छोटी छोटी तोतली बोली और उस बोली के साथ में इस प्रकार की नटखट जितनी भी उनकी हरकतें हैं वे सबके मन को मोहने वाली। तो एक फल विक्रेणी जो फल बेचती थी मथुरा में रहती थी, सर्वत्र जाति ब्रज के गांव में गोकुल में सब वनों में और फलों को बेचती, तो उसके कानों में ये सब कथाएं पड़ने लगी कि नंद बाबा के घर में एक बड़ा ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया है, सांवरा सा बालक है किंतु बड़ा ही नटखट है, सांवले रूप में सुंदरता समझ में नहीं आती, लेकिन सच मानो तो लगता है कृष्ण के उस सामले रूप से ही सारी सुंदरता निकल करके आ रही, यदि कहीं सुंदरता है तो उस सामले रूप में ही है, वहीं से आ रही, ऐसा अद्भुत यही कहा गया है। इस संसार में जितने भी गुण आपस में विरोधी हैं, एक साथ नहीं बैठ सकते, वे सभी गुण भी स्वयं भगवान में एक साथ बड़े ही सुंदर रूप में विराजमान हैं।
चेयर पर बैठे तो वहां पर बैठ जाए डॉक्टर साहब, चेयर पर बैठेंगे तो वहां पर बैठ जाइए आराम से, ठीक।
तो भगवान में वे सभी गुण एक साथ विराजमान होते हैं और बड़े सुंदर रूप में एक दूसरे का वर्धन करते हैं, इससे प्रभु को भी आनंद होता है और अपने भक्तों को भी वो आनंद देते हैं। तो जब फल विक्रेणी ने भगवान के बारे में, नंदलाला के बारे में, कन्हैया के बारे में ये सब बातें सुनी, तो उसके मन में एक बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी जाऊं और उस कन्हैया का दर्शन करूं, उस छोटे बाल गोपाल का दर्शन करूं। तो ऐसी भावना कर एक दिन सुबह जब वो नंद बाबा के घर में जाना चाहती है कन्हैया का दर्शन करने के लिए, उसे बड़े सुंदर सुंदर फल उसने एकत्र किए, इस बार फलों को बेचने की दृष्टि से नहीं लेके जा रही है, जाकर के नंदलाला को कुछ दूंगी, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर फल उसने अपनी टोकरी में इकट्ठे किए। और जब गोकुल की ओर प्रस्थान कर रही है तो रास्ते में फल वाली है तो यही तो बोलती है, फल लो फल लो फल लो, किंतु कन्हैया के दर्शन में, दर्शन की लालसा में, उनसे मिलने की जो उसकी उत्कट अभिलाषा है उसमें इतनी भी भावित हो गई, इतनी हो गई कि वो भूल गई वो क्या कह रही है। आधे रास्ते के बाद ही बोलती है, गोविंद लो, दामोदर लो, माधव लो, गोपाल लो, पता ही नहीं। और लोग क्या समझते हैं, बावरी हो गई है, इसको इसको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, और वास्तव में इसको अपनी सुधबुद्ध की कुछ खबर नहीं है। जिसके हृदय में भगवान को पाने की अभिलाषा इस कदर इस प्रकार से हृदय में बैठ जाए तो क्या लक्षण है उसका, वो इस लीला में हम देख रहे हैं। ऐसे विरले भक्तों को संसार का कोई भी अन्य आकर्षण फिर किसी भी प्रकार से उनके मन को लुभा नहीं सकता। तो साधकों को भी इन लीलाओं के द्वारा इन सब चीजों को सब समय अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जितने परिमाण में भगवत कथा के प्रति हमारी रुचि हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है उतनी मात्रा में संसार के प्रति हमारी विरक्ति निश्चित होना अनिवार्य है, अटल सत्य ही अवश्य होगा ही होगा। और यदि ऐसा नहीं देखा जाता है, हमारी संसार के कर्मों को उसी प्रकार से आसक्ति बनी है, आग्रह बना हुआ है, शरीर शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति हम यदि उसी ही प्रकार से आसक्त हैं, तो इसका मतलब है अभी भगवत कथा के प्रति रुचि नहीं हुई है, उसमें कुछ कमी है, अथवा प्रक्रिया में कहीं पर हम उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, अथवा जो साधु संत हैं वैष्णव लोग हैं उनके पास जाके इस विषय में उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो फल विक्रेणी आगे बढ़ी और नंद बाबा के घर तक पहुंची। नंद बाबा के घर में पहुंचकर नंद बाबा के द्वार की ओर एक तरफ देखे जा रही है कि कन्हैया अब बाहर आएगा, अब बाहर आएगा, अब बाहर आएगा और मैं उस सांवले सुंदर रूप का दर्शन करूंगी। किंतु क्या हुआ, आज तो कन्हैया घर से बाहर निकले ही नहीं, बड़ी निराश हुई उसको और फिर किसी प्रकार से लौट गई। अगले दिन फिर उसी भावना को लेकर के कि आज तो मैं जरूर दर्शन करूंगी, वो फिर ब्रज की ओर चलती है और इसी प्रकार से रास्ते में फलों की टोकरी लेकर के कभी कृष्ण लो गोपाल लो इस प्रकार से भगवान के नामों को उच्चारण करती हुई नंद बाबा के घर की ओर जाती है और नंद भवन के बाहर बैठ करके फिर उसी प्रकार कन्हैया का इंतजार करती है। इसी प्रकार कुछ दिन तक जब वो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है तो एक दिन वो अपने मन में प्रण कर लेती है, धैर्य। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी अपने उपदेशामृत में भक्ति के नियमों को बताते हुए इस विषय को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह ही चाहिए, परम उत्साह, जैसे इस कथा में हम देख रहे हैं उस फल विक्रेणी की कितनी उत्कट लालसा है, ये है उत्साह, आनंद। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए जिसमें हमें आनंद होता है स्वाभाविक रूप से ही हमारी उसके प्रति एक अतीव उत्कंठा लालसा पैदा हो जाती है, ये उत्साह का लक्षण है। और फिर निश्चय, उस कार्य को करने के लिए निश्चय हमारे हृदय में होना चाहिए कि अवश्य ही मैं इस कार्य को करूंगा, किंतु उसके साथ ही साथ कार्य करने में निश्चित कुछ विलंब भी हो सकता है, इसलिए धैर्य। यदि हम साधक धैर्य को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में सफल नहीं हो सकेंगे। तीनों ही चीजों का समान संतुलन बना करके हमें चलना पड़ेगा। तो आज उसने प्रण किया कि अवश्य ही जब तक मैं अपने इष्ट देव अपने प्रभु अपने मन को जिन्होंने मेरे मन को चोरी कर लिया मेरे मन को जिन्होंने मोहन कर लिया है उनका दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक मैं लौटूंगी नहीं। और इस भावना को लेकर के वो नंद भवन में गई और वहां जाकर के बैठ गई, नंद भवन में नंद द्वार पर जाकर के बैठ गई और सोच रही है अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्याम सुंदर आएंगे। जब इतनी उत्कंठा लेकर के कोई भक्त भगवान के पास जाएगा तो अब भगवान की क्या अवस्था होगी, अरे वो तो पहले से ही पिघले बैठे हुए, तो अब कन्हैया भी अंदर छटपट छटपट कर रहे हैं और रोक नहीं पा रहे अपने आप को कि जाऊं और इस भक्त को मिलकर के इसको दर्शन दूं और इसके दर्शन से स्वयं तृप्त हूं। इस भावना को लेकर के छोटे से नटखट गोपाल रूप में श्याम सुंदर कन्हैया बाहर आते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फल वाली बैठी हुई है। अब उसे फल लेने हैं, फल लेने हैं तो फल ऐसे तो मिलेंगे नहीं, फ्री में तो कोई काम नहीं होता, गिवन टेक, ददाति प्रतिगृह्णाति। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम्। प्रीति का लक्षण क्या है, हमारी एक दूसरे से प्रीति है तो इतनी बात तो हम देखते हैं, पिताजी सारा दिन भर काम करते हैं शाम को घर लौटते हैं तो हाथ में क्या होता है, कुछ फल होंगे, कुछ मिठाई होगी, कुछ वस्तु होगी बच्चों के लिए, अथवा नाना प्रकार से एक दूसरे से परिवार के प्रति कितना कुछ होगा। और बच्चों में भी ये लालसा है कि पिताजी आएंगे तो क्या लाएंगे, यहाँ जन्मदिन है तो मैया कुछ ला रही है, मैया के लिए बच्चे कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले वो मदर्स डे निकला, कितना बड़ा बवंडर उसका मचाएगा सारे संसार। तो इस प्रकार से ये सब प्रीति के लक्षण है। केवल एक तरफा प्रीति होगी, हम लेते ही रहेंगे लेते ही रहेंगे लेते ही रहेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो ये प्रीति का लक्षण नहीं है। तो भगवान स्वयं छोटे से बालक के रूप में विचार करते हैं इस बात का कि मुझे कुछ देना है उसको, तो क्या देंगे, नंगे तो हैं, गर्भिणी एक पहन रखी है, कुछ भी नहीं है, तो घर में जाकर के कुछ गेहूं के दाने उठाते हैं, पूछे करते हैं बहुत सारा उठा लूंगा, तो दोनों हाथों से खूब उसको हाथों को भरते हैं, तो छोटा सा बालक हाथ उसके खुले हुए दोनों को जोड़ भी नहीं सकता, तो कितने गेहूं उठा लेगा, एक या दो दाने उनके हाथों में किसी प्रकार से बड़ी मेहनत करके अटक गए और उसको ला करके फल वाले के पास आए उसको देने के लिए, और उसे बोलते मुझे फल दो। किंतु फल विक्रेणी की लालसा क्या है, वो तो वात्सल्य भाव से बाल गोपाल का दर्शन कर रही है, तो बोलती है ऐसे नहीं दूंगी, फिर कैसे दोगी, मेरी गोदी में बैठना पड़ेगा और गोदी में बैठ करके मुझे मैया कहना पड़ेगा, तब मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ेगी, क्या किया जाए, तो बड़ी विराट समस्या है। क्यों समस्या है, यदि किसी ने देख लिया क्यों, ये तो मैं तो जानता भी नहीं इस स्त्री को कौन है, अनजान व्यक्ति, और इसके पास ऐसे चला जाऊं और गोदी में बैठ जाऊं, ये कैसे संभव है। तो लेकिन फल वाली ने खूब जिद कर रखी है कि नहीं, जब तक आप गोदी में नहीं बैठोगे और मैया नहीं कहोगे फल नहीं मिलेंगे, और इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुगंधित फल, कन्हैया की जीभ में पानी आ रहा है, क्या करें। तो फिर इधर उधर देखा, देखा कोई भी नहीं है, झट करके उस गोदी में बैठ करके और उसकी ठोड़ी को हाथ में डाल करके मैया, एक क्षण से भी कम समय लगा करके उधर के बाहर, पता भी नहीं चला कब बैठे और कब बाहर आए। किंतु कितनी सी ही देर में क्या हो गया, उस फल वाली का तो सब लूट गया, कुछ भी नहीं बचा उसका, वो वही की वही एकदम जड़ मूर्ति की तरह हो गई, पत्थर की तरह हो गया। कन्हैया का इतना प्रेम भरा स्पर्श, प्रेम भरा दर्शन, उसके चित्त को पूरी तरह से जो कुछ भी बचा हुआ था पूरी तरह से हरण कर लिया उसने, और फिर उस फल वाली से फल लेकर के कन्हैया अंदर आ गए, और अंदर आके यशोदा मैया को उन्होंने फल दिए। कितने फल उठा लिए उन्होंने, दोनों हाथों को लगा करके एक दो फल आम केला उठा करके घर में ले आए। किंतु अद्भुत, यशोदा मैया जैसे जैसे उन फलों को सबको बांटती हैं, वैसे वैसे वो फल बढ़ते ही चले जाते, खत्म ही नहीं होते वो फल। और इधर फल वाली की क्या अवस्था हुई, वो तो बस वही की वही एक तक, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ है, उसका चित्त कहाँ है, मन प्राण कहाँ है, वो कहाँ बैठी, इस चीज की तो कुछ खबर नहीं है। फिर संध्या हो चली तो किसी पथिक ने देखा, ले ये तो यही बैठी है, इसको क्या हो गया है, घर भी लौटेगी कि नहीं, उसको झुरझुरा, अरे नहीं उठ, घर नहीं जाना तुझे। फिर उसको थोड़ी सी होश आई, मैं कहाँ बैठी, तो जैसे जैसे करके उस टोकरी को उसने अपने सर पे उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ी, घर की ओर चल पड़ी, नहीं जानती कहाँ जा रही, अभ्यास के द्वारा उसके पांव जिस तरह उसे लिए चले जा रहे हैं वो चली जा रही है, पता नहीं पूरी तरह से उस सुंदर रूप, जिस रूप को उसने देखा, जिस रूप का उसने स्पर्श किया, वो पूरी तरह से उसके हृदय में बैठा हुआ है, बस चारों तरफ वो ही नजर आ रहा है उसको, और कुछ सुलभ ही नहीं। और किंतु जैसे जैसे करके जब वो यमुना के निकट पहुंची, उसको लगा सर तो बहुत भारी हो गया, इतना भारी कैसे हो गया, तो टोकरी को नीचे उठा करके देखा, तो देखा टोकरी रत्नों जवाहरातों और बड़े बड़े बेशकीमती हीरों से भरी पड़ी, हीरे पन्ने जो कभी देखे नहीं। तो अब क्या करें, मुझे इसकी क्या जरूरत है, ये मेरे किस काम के, और लेके जमुना जी में फेंक दी। और फिर वो कहां गई, किधर आई, किधर घर पहुंची कि नहीं पहुंची, किसी को उसका कुछ पता नहीं था। किंतु ऐसा वर्णन है इतने सुंदर भाव के कारण, जहां पूजना का वर्णन हमने सुना, जो कपटता की साक्षात मूर्ति, अपवित्र पूजना राक्षसी, स्वयं भगवान को जो मारने की अभिलाषा से आई, और ऐसी अभिलाषा रखने पर भी भगवान इतने दयामय, कौन इतना दयामय होगा जो ऐसी पूतना को भी उन्होंने धात्रोचित गति प्रदान की, केवल मां का वेश बनाने के कारण। और इधर ये फल वाली, जिसके हृदय में उनकी सेवा करने की इतनी प्रगाढ़ लालसा, तो इसकी क्या गति होगी, हम कुछ इसका स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि साधक लोग इस लीला और इस प्रकार जितनी भी भगवान और भगवान के परिकरों के संबंधित लीलाएं हैं, उन लीलाओं को गौर से श्रवण करें, और श्रवण करके उन लीलाओं से जो शिक्षाएं हमको मिल रही हैं उन शिक्षाओं को अपने अधिकार अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करें तो निश्चित ही अल्प समय में ही भक्ति के इन अंगों का पालन करने से हमारे जीवन में जितना भी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक भगवान की कृपा से हमको मिल जाएगा और किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की आशंका हमारे जीवन में नहीं रह जाएगी। हरे कृष्ण।
कोई समझ न ले आए इन लीलाओं को सुनने से, जे कृष्ण ऐसे ही एक साधारण से बालक थे, वे सर्वेश्वर हैं, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोटि कोटि लोगों के सबके मूल वो हैं। एक समय बालकों के साथ में 10-20-50 बच्चों के साथ नंगटे खेल रहे थे, धूल खेला है, जानते हैं ना, बच्चे खेलते हैं वो धूल की खेल खेल रहे हैं। तो एक ऋषि आए सामने से, कौन, दुर्वासा जी, लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद पकी हुई और जटाएं, विशाल शरीर, वहां पर उपस्थित हुए। बच्चे जो खेल रहे थे साधु महात्मा को देख करके खेल ही रहे थे, ये न जाने क्यों आज जरा खड़े होकर के देखने लगे। खड़े नहीं होने से हुआ तो थोड़ा सा बैठ गए और बड़े ध्यान से देखने लगे बच्चों को, बड़ी तेज हैं, बड़े अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कैसे लीला खेला करते हैं। इतने में श्री राम जी ने कृष्ण को उलाट दिया, पलट दिया, और उस समय में कृष्ण और वो दोनों लड़ने लगे परस्पर। जब मैंने तुमको हराया, वो कहते हैं तुमने हमको हराया, हमने हम हारा है, और वो कहते हैं कि हमने हारा। दोनों नालिश लेकर के उस ऋषि महात्मा के पहुंचे, दुर्वासा के, बाबा तू बतला तो, मैंने जीत लिया ना। तो श्रीदाम कहते हैं मैंने जीत लिया ना, अरे तू बोलता क्यों नहीं है। तो कृष्ण कहे तू गूंगा है, बोलता क्यों नहीं, हम उनकी बोली नहीं निकल रही। दुर्वासा जी, दुर्वासा का नाम सुना है ना, जो कैसे भयंकर आदमी है, तो उनकी तूती और बोली बंद, एकदम बंद हो गई। फिर कृष्ण ने कहा अरे बाबा जरा थोड़ी मार ले, क्या हो गया तुमको नहीं बोलता है। और कृष्ण ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के साथ ही उसके मुख में ये चले गए ऋषि। और कितने दिन तक, लाखों बरस तक उनके पेट में इधर उधर घूमते 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 कहीं था नहीं पाते हैं। कतो कितने ही युगों के बाद में वो फिर वही पहुंचे हैं गोकुल में, और फिर वही बालक सब खेल रहे हैं वहां पर भी, वहां गोकुल में ही। चारों तरफ में देखा, ब्रह्मांड देखा, कोटि कोटि ब्रह्मांड, हजार हजार मुख वाले ब्रह्मा और पांच मुख के शंकर होते हैं, हनुमान होते हैं, वो लाख लाख मुखों के देखे। और ऐसे एक दो ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखा, बिरजा देखा और कहां कहां देखा, एकदम आश्चर्य में डूब गए। फिर घूमते 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 अब यहां पर आए उसी गोकुल में, वहां मुख में ही गोकुल, और वहीं पर यशोदा मैया और सब ब्रजवासी लोग, और यही बच्चे लोग खेल रहे हैं, और कृष्ण मुस्कुरा करके पूछ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं मैं क्या करूं। इतने में मुस्कुरा दिया और उनके मुख से आप तो देख रहे, अरे मैं क्या देखा, मैंने देखा क्या, बस एकदम सष्टांग प्रणाम होकर के स्तुति करने, बाक भी स्फूर्ति नहीं। ऐसे ही ये कृष्ण है, बच्चों के साथ में खेल रहा है, और ये जो कहानी सुना दिया बस ऐसा मत समझो अबोध बालक है। ये सबको लीलाओं को लेकर के जगत के कल्याण के लिए इस जगत में आते हैं। यशोदा मैया जी मनी मन में चिंता कर रही है, हमारा बेटा उद्यमी क्यों हो गया, बड़ा शांत है, नटखट तो था नहीं, ये गोपियां आकर के हमें उलाहना रोज देती हैं कि ये मक्खन चुराता है, हमने इसको कभी देखा नहीं ऐसा, तो हो सकता है कि ये चुराता हो। एक बात हो सकती है, क्या गलती हमारे अंदर में है, हम गायों का दूध नौकर से निकलवाते हैं, और नौकर से निकलवाते हैं वो ऐसे ही निकालते होंगे काटते होंगे, और हमारी नौकरानियां दही जमाती है गोपियां, मैं अपने हाथ से तो करती नहीं, और वो दही जो होता है बनता है उसका वो खट्टा हो जाता है, और उससे मक्खन जो निकलता है जरूर खट्टा हो गया होगा, इसलिए ये खाता है। और उनके घरों में अपने अपने घरों में अपने अपने निकालती हैं, इसलिए वो मीठा होता होगा। बात इसमें क्या है, अपने घर में ठाकुर जी हों और पुजारी के द्वारा उसका पूजा कराओ कुछ महीना देकर, उससे ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं होगी, नहीं होगी। तुम्हारे घर में शादी तुम्हारी है और नौकरानी दो चार रख लो और कहो जैसे मैं थोड़ा सा काम में हूं और तुम उनको खिला देना, पति को उसे आनंद आएगा ना खाने में। और यदि रसोई बना करके अपने हाथों से अच्छी अच्छी, हाथ में एक पंखा ले ले और बैठ जाए उसके सामने, जरा साग खाना तो देखा जो कैसा टेस्टफुल है, जरा देखो तो देखो हमने ये रसगुल्ला अपने हाथ से बनाए हैं और उठाया और उनके हाथ में दे दिया, और इधर पंखा जल रही है, इसमें प्रेम है। आजकल की स्त्रियां ये सब भूल गई हैं, इलेक्ट्रिक का पंखा खोल देंगी चाहे वो जोर से चल रहा हो धीरे चल रहा हो कोई बात नहीं, प्रेम तो है नहीं, प्रेम तो होता है दूसरे से, कहीं अटका हुआ है वो प्रेम है? प्रेम किसमें? अच्छा मतलब तो ये प्रेम कहाँ रहे? तो कृष्ण चाहते हैं जो ऐसा हो, हमको हमारी जो सेवा करे वो दूसरों से ना कराए, खुद सेवा करे, और नहीं तो फिर वो खट्टा हो जाता है। तो जशोदा जी सोचे से ऐसी बात है, आज से मैं कल वो अन्नकूट का उत्सव है, दीपावली है, इसलिए आज सबको छुट्टी दे रही हूं, जितनी गोपियां उनके घरों में काम करती, कहा आज तुम अपने घर में दीपावली बनाने के लिए जाओ, और पुरुषों को छोड़ दिया, तुम भी अपने अपने घरों में जाओ, आज मैं ही अच्छी से अच्छी पांच गायों का दूध, पद्म गंधा, मृदंगमुखी, कालिंदी, धवरी, श्यामली, ऐसे प्रिय गायों को आज मैं दूंगी और अपने हाथ से दही जमाऊंगी और फिर अपने आप ही मक्खन लेकर के देखूं ये कृष्ण कैसे नहीं खाता। इसलिए आज भोर सवेरे ही पहले ही दिन अपने हाथों से दूध काढ़ा और उसको बैठाया आग पर, और बैठा करके उसमें लैनू डाला, लैनू जानती हैं, लैनू मैंने दही का वो संचार उसमें डाला, और दही बड़ी सुंदर आज एकदम लाल जैसी हुई ना? और भोर में चार बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में आज मथने के लिए बैठी। मथनी कैसी? हाथ से एक होती वो नहीं, वो तो चार पांच किलो वाले दूध में, और वो होता है एक कोई खंभा हो पिलर, उसमें रस्सी डाल करके, मथनी में भी रस्सी डाल करके घर और घर घर ऐसे वो चलती है, वो जल्दी से होता। यदि दस पेन भी दूध हो तो उसमें, और गोपियां हों जरा पूजा वाली हों दम वाली हों तब होगा, आप लोगों से वो तो मथनी ही नहीं उठेगी पांच किलो की। मूसल देखा है? मूसल पहले मूसल उठाती थी, उसे कूटती थी, बड़ी बड़ी चक्कियां चलाती थी, दाल की अलग, आटा और सत्तू की अलग, इसलिए उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता था, कोई रोग ही नहीं होता था। आजकल तो बस ब्लड प्रेशर, ये डॉक्टर साहब तबाह हो जाते हैं लोग, ब्लड प्रेशर मापते और जोखते जोखते, इनको भी वैसे ही बीमारी, यह छूते नहीं है ने? तो पहले ऐसी ही रीति थी, हम लोगों ने भी देखा ये, हमारी पिताजी की मैया ऐसे ही, पिताजी बना दिया था वो ऐसे ऐसे करती थी, इसलिए हमको कुछ आइडिया है। तो वो जशोदा जी कितनी सुंदरी, कितनी सुंदरी थी, अरे जिसका भुवन मोहन बेटा ही जैसा है, यदि वो नहीं सुंदरी होती तो वो कहां से आते, टपक जाते आकाश से, इसलिए जितना उनका रूप है यशोदा जी के गर्भ से आने से बड़ी सुंदरी है, विराट ललाट है, वस्त्रक्षल चौड़ा है, कमर कितनी बस अभी टूटी अब टूटी। अच्छा वस्त्र कैसे हैं? चीन देश के रेशमी के वस्त्र हैं, जिसे भीतर अंग, भीतर का अंग भी बाहर में एकदम सुंदर रूप से दिखाई पड़ता है, फूट करके निकल पड़ता है। समझ में आ रहा है? एकदम सुंदर सा। और उसमें से साड़ी से उनके अंग प्रत्यंग बाहर में दिखाई पड़ रहे हैं, कितना सुंदर गठीला उनका शरीर। और वो क्या करें, उनका गला कैसा मधुर, जब उसके बेटे का इतना सुंदर मधुर गला है तो उस मैया का कैसा होगा। उम्र कितनी, अब अधेड़ उम्र हो गई है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों तक नहीं हुए, इसलिए ज्योति नहीं थी। वो अब 30-35-40-50-60 वर्ष की अब हो गई थी। उस समय तो उम्र बहुत 200-300 वर्ष की होती, 400-500, इसलिए उस उम्र की थी। और वो घर घर ऐसे कर रही हैं, तो ऐसा करने से उसके पिछला जो दधी से जो शब्द उठ रहा है वो मृदंग का पिछला भाग, और आगे वाला चूड़ी, चूड़ी उपन रखी है, कैसी सोने की चूड़ियां बड़ी सुंदर झंकृत हो रही है, बड़ी सुंदर। और मिल करके वो गोविंद दामो कन्हैया की चिंता कर रही है। और उसकी बाल केली जो करता है, बाल केली की जो लीलाएं हैं उस सबको सुंदर रूप से गाती हुई और तन्मय होकर के दधि मंथन कर, और उनके दधि से जो शब्द उठता है और चूड़ी से मानो एक तरफ आता है धिक धिक तान, ये धिक धिक, और इधर से क्या आया तान मीठा, एक तरफ से धिक धिक है उनको, धिक्कार है उनको जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, मानो इस तरह से। और वो गा करके एकदम तन्मय हो गई। कृष्ण को बड़ी अब भूख लगी है, पलंग पर अकेले सोया है, आंखें काजल से भरी हैं, और मैया के लिए देख रहा है, मैया किधर गई, इधर गई, आंख खोल नहीं रहा, और वहीं से ऊ करना आरंभ कर दिया, अब ऊ कर रहा। इतने में मैया एकदम सुन नहीं रही, वो तो जोर से दधि मंथन करती हुई गा रही है एकदम तन्मय होकर के। कीर्तन हो तो ऐसा ही, किसी की सूद बुद्ध, इसलिए यह कीर्तन भगवान को भी आकर्षण कर रही। इसलिए कृष्ण को आकर्षण किया पलंग पर सोए हुए, अब जहां जो कीर्तन कर रहा है उसके पास में उनको जाना है। भगवान कहाँ रहते हैं? नाम तिष्ठामी जोगी नाम नाच, और जत्र हमारे भगवान के भक्त लोग गाते हैं वहीं पर आप कीर्तन करेंगे जरूर आ जाएंगे। इसलिए कीर्तन कर रही है तन्मय होकर के, हम कीर्तन करते हैं तो देखते हैं कि ये लोग कहेंगे जी अच्छा गा, महाराज जी अंततः बोलते दे जैसे बहुत अच्छा, ताली बजा दे। वहां नहीं, एकदम तन्मय हो, कृष्ण ही सुन रहे हैं, बस वहां से कृष्ण चले, किंतु उतर नहीं पा रहे। विश्व ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर के उछाल दिया, गोवर्धन पर्वत को समूल ही उखाड़ करके रख लिया, 7 दिनों तक एक कानी अंगुली पर रख लिया, और आज वो अपनी पलंग से उतर नहीं रहे हैं। बतलाओ, यही उनकी लीला है, किसी तरह से पेट के बल उतरे, और दोनों आंखों से ऊ करते हुए कुछ आंसू भी गिर रहे हैं और कुछ ऐसे सूखे भी रो रहे हैं। अब वो कज्जल यहां से निकला हुआ और रोना का थोड़ा सा क्या हुआ, पूरा एकदम काला हो गया, और काला होकर के यहां से बनल, एक तो काला और काले के ऊपर में ये काला, एक तो नीम करेला अपने आप, और नीम चढ़ा करेला हो तो क्या करेगा, तो वैसे ही कृष्ण काले और एकदम काला है। उसमें भी नंगे हैं काले सब, उसमें भी एक सौंदर्य निखर करके आ रहा है। जो नहीं देखेगा उस चीज को नहीं समझेगा। इसलिए एक कवि वर्णन करते हैं भक्त, ओ नमामीश्वरम सचिदानंद लसत कुंडलम गो कुले भ्राजमा जसोदा भी ओलू खला धाव। ओ आप ऐसे ही रोते रहे और जसोदा जी ने अपनी कमर को बांध दिया, यही रूप हमारे हृदय में सब समय। लोग कहते हैं अरे भाई तुमको दया नहीं आती, इसको ऐसे ही बांध करके सब समय रखना चाहता है। हाँ जरूर, मैं तो इसको अपने काले अंधकार वाले कारागार में बंद करके रख दूंगी, ये कभी ना निकल सके हमारे हृदय। तो ये जसोदा मैया गाने लगी और वो कीर्तन करने लगी और वहां से चली। निकट में आते जाते हैं उनके रोनी का आवाज बढ़ता जाता है। रोना कैसा है, बदनम मधुरम रोदनम मधुरम, रोदन भी बड़ा मधुर, उनका देखना भी मधुर, उनकी गोपियां भी मधुर, उनकी मथुरा भी और वृंदावन भी मधुर, उनका सब, उनका देखना रोना हंसना सभी कुछ मधुर। तो वहां से किसी प्रकार से निकट में आए और उनका दधि मंथन पकड़ लिया और एक हाथ से उनके केश पकड़ लिए और कहा जब मैया, कृष्ण कहा जी कौन आ गया, जसोदा मैया, फिर करके देखी जी तो कन्हैया है, बस प्रेम उमड़ पड़ा और बच्चे को लेकर के गोदी में बैठाया, दधि मंथन बंद कर दिया और अपना स्तन उनके मुख में दिया और उसको ढक दिया। और भाव कैसे आए, इसी को कहते हैं भक्ति। रस कैसे बनता है, पानी है, नींबू है, शरबत चीनी है, और सब चीजें हैं, केवड़ा है, गंध है, ये चीजें तो हैं, किंतु किसी को बनाना आता है किसी को नहीं बनाने आता, जानने से ही नहीं होगा कितना किसमें कितना पड़ेगा। एक किलो चीनी में 15 किलो पानी डाल दिया तो होगा, और 10 किलो चीनी में 1/6 पानी मिला दिया और उसमें 50 नींबू उसमें निचोड़ दिए, तो ये बनेगा। रस का भी तरीका होता है, जो सुधा जी को ये मालूम था, इसलिए उनके भाव विभाव अनुभाव सात्विक संचारी व्यभिचारी सभी जितने भी भाव थे एक साथ में उदित हुए। वो सिद्ध भक्तों को होगा, साधारण लोगों को नहीं होता। आंख से प्रेम के आंसू छा गए किंतु वो गर्म नहीं है, कैसे है, ठंडे आंसू है, वो प्रेम के आंसू है, इसलिए ठंडे आंसू है। और शरीर में रोमांच हो गया जब छूती है अपने बेटे को और प्रेम से आंखों से आंसू आ जाते हैं, ये संचारी भाव है। बेटा क्या है, ये विषय है प्रेम का। खुद क्या है, मैया, ये क्या है,
प्रेम का आश्रय है, प्रेम का आश्रय,
ये विभाव, किंतु विषय कृष्ण है और जसोदा मैया आल आश्रय है। और इस तरह से अनुभव साथ जितने रस की सामग्री है इसमें आ गई। यदि इतना होगा तो हमारे भी ऐसे होगी हरि कथा सुन करके अथवा कृष्ण को या किसी को देख करके, और नहीं होने से नहीं होगा, दब धरा रह गया। ये होता है किसको, जो भाव भक्त होते हैं उनको होता है। इसलिए भागवत में बतलाया निगम कल्प तरोर गलितम फल मुखम संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम हो। ये तो रसिक भक्त जो है मुक्त महापुरुष है उनके लिए, सुखदेव गोस्वामी नारद और इन लोगों के लिए, गोप गोपियों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है। हनुमान जी को सुना होगा ना, सब समय रोमांचित और पुलकित होकर के क्या करते हैं, नाचते रहते हैं, हाथ में वो ले लेते हैं और नित्य कीर्तन करते हैं। तो ये सब भाव है जसोदा मैया उसी तरह से कर ही आया और उसको मंथनी पकड़ लिया और ये देखा, फिर उनको दूध पिलाने लगी। अब कुछ बातें हुई, आज यहीं तक रहे, 8:30 बज गया है, समय हो रहा है, घंटी बज गई है। गौर प्रेमान। आगे की बात अब कल बतलाएंगे। मैं कल रामायण की बात कहना चाहता तो इसको जल्दी से समाप्त करके रामायण कुछ कल और परसों रामायण की कुछ प्रेममयी बातें बतलाऊं।
हरे Thus ends the class on the 21st of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.
बनता है उसका वो खट्टा हो जाता है और उससे मक्खन जो निकलता है जरूर खट्टा हो गया होगा इसलिए ये खाता है और उनके घरों में अपने अपने घरों में अपने अपने निकालती हैं इसलिए वो मीठा होता होगा। बात इसमें क्या है, अपने घर में ठाकुर जी हो और पुजारी के द्वारा उसका पूजा कराओ कुछ महीना देकर उससे ठाकुर जी प्रसन्नता नहीं हो। तुम्हारे घर में शादी तुम्हारी है और नौकरानी दो चार रख लो और कह जैसे मैं थोड़ा सा काम में हूं और तुम उनको खिला देना, पति को उसे आनंद आएगा ना खाने में। और यदि रसोई बना करके अपने हाथों से अच्छी अच्छी हाथ में एक पंखा ले ले और बैठ जाए उसके सामने, जरा साग खाना तो देखा जो कैसा टेस्टफुल है, जरा देखो तो देखो हमने ये रसगुल्ला अपने हाथ से बनाए हैं और उठाया और उनके हाथ में दे दिया और इधर पंखा चल रही है, इसमें प्रेम है। आजकल की स्त्रियां ये सब भूल गई है, इलेक्ट्रिक का पंखा खोल देंगी चाहे वो जोर से चल रहा हो धीरे चल रहा हो कोई बात नहीं, प्रेम तो है नहीं। प्रेम तो होता है दूसरे से, कहीं अटका हुआ है वो प्रेम है प्रेम रह किसमें अच्छा मतलब तो ये प्रेम कहाँ रहे। तो कृष्ण चाहते हैं जो ऐसा हो हमको हमारी जो सेवा करे वो दूसरों से ना कराए खुद सेवा करे और नहीं तो फिर वो खट्टा हो जाता है। तो जसोदा जी सोचे से ऐसी बात है। आज से मैं कल वो अन्नकूट का उत्सव है दीपावली है इसलिए आज सबको छुट्टी दे रहे हैं। जितनी गोपियां उनके घरों में काम करती थी आज तुम अपने घर में दीपावली बनाने के लिए जाओ और पुरुषों को छोड़ दिया तुम भी अपने अपने घरों में जाओ। आज मैं ही अच्छी से अच्छी पांच गायों का दूध पद्म गंधा मृदंगमुखी कालिंदी धवरी श्यामली ऐसे प्रिय गायों को आज मैं दूंगी और अपने हाथ से दही जमाऊंगी और फिर अपने आप ही मक्खन लेकर के देखूं ये कृष्ण कैसे नहीं खाता। इसलिए आज भोर सवेरे पहले ही दिन अपने हाथों से दूध काटा और उसको बैठाया आग पर और बैठा करके उसमें लैनू डाला। लैनू जानती हैं, लैनू मैंने दही का वो संचार उसमें डाला और दही बड़ी सुंदर आज एकदम लाल जैसी हुई ना? और भोर में चार बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में आज मथनी के लिए बैठी। मथनी कैसी हाथ से एक होती वो नहीं, वो तो चार पांच किलो वाले दूध में और वो होता है एक कोई खंभा हो पिलर उसमें रस्सी डाल करके मथनी में भी रस्सी डाल करके घर और घर घर ऐसे वो चलती है वो जल्दी से होता। यदि दस पेन भी दूध हो तो उसमें और गोपियां हो जरा पूजा वाली हो दम वाली हो तब होगा। आप लोगों से वो मथनी ही नहीं उठेगी पांच किलो। मूसल देखा है, मूसल पहले मूसल उठाती थी उसे कूटती थी बड़ी बड़ी चक्कियां चलाती थी, दाल की अलग आटा और सत्तू की अलग, इसलिए उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता था कोई रोग ही नहीं होता था। आजकल तो बस ब्लड प्रेशर ये डॉक्टर साहब तबाह हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर मापते और जोखते जोखते इनको भी वैसे ही बीमारी यह छूते नहीं है। तो पहले ऐसे ही रीति थी, हम लोगों ने भी देखा ही हमारी पिताजी की मैया ऐसे ही पिताजी बना दिया था, वो ऐसे ऐसे करती थी, इसलिए हमको कुछ आइडिया है। तो वो यशोदा जी कितनी सुंदरी थी। अरे जिसका भुवन मोहन बेटा ही जैसा है, यदि वो नहीं सुंदरी होती तो वो कहाँ से आते, टपक जाते आकाश से। इसलिए जितना उनका रूप है यशोदा जी के गर्भ से आने से बड़ी सुंदरी है, विराट ललाट है, हस्तक्षल चौड़ा है, कमर कितनी बस अभी टूटी अब टूटी। अच्छा वस्त्र कैसे हैं, चीन देश के रेशमी के वस्त्र हैं, जिसे भीतर का अंग भी बाहर में एकदम सुंदर रूप से दिखाई पड़ता है, फूट करके निकल पड़ता है। समझ में आ रहा एकदम सुंदर सा। और उसमें से साड़ी से उनके अंग प्रत्यंग बाहर में दिखाई पड़ रहे हैं, कितना सुंदर गठीला उनका शरीर। और वो क्या करें, उनका गला कैसा मधुर, जब उसके बेटे का इतना सुंदर मधुर गला है तो उस मैया का कैसा होगा। उम्र कितनी, अब अधेड़ उम्र हो गई है क्योंकि बच्चे बहुत दिनों तक नहीं, इसलिए ज्योति नहीं थी। वो अब 35-40-50-60 वर्ष की अब हो गई थी, उस समय तो उम्र बहुत 200-300 वर्ष की होती, 400-500 इसलिए उस उम्र की थी। और वो घर घर ऐसे कर रही हैं, तो ऐसा करने से उसके पिछला जो दधी से जो शब्द उठ रहा है वो मृदंग का पिछला भाग और आगे वाला चूड़ी उपन रखी है, कैसी सोने की चूड़िया बड़ी सुंदर झंकृत हो रही है, बड़ी सुंदर। और मिल करके वो गोविंद दामो कन्हैया की चिंता कर रही है। और उसकी बाल केली जो करता है, बाल केली की जो लीलाएं हैं उस सबको सुंदर रूप से गाती हुई और तन्मय होकर के दधी मंत्र। और उनके दधी से जो शब्द उठता है और चूड़ी से मानो एक तरफ आता है धिक धिक तान, ये धिक धिक, और इधर से क्या आया तान मीठा, एक तरफ से धिक धिक है उनको, धिक्कार है उनको जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, मानो इस तरह से। और वो गा करके एकदम तन्मय हो गई। कृष्ण को बड़ी अब भूख लगी है, पलंग पर अकेले सोया है, आंखें काजल से भरी हैं और मैया के लिए देख रहा है, मैया किधर गई इधर गई, आंख खोल नहीं रहा। और वहीं से ऊं करना आरंभ कर दिया, अब ऊं कर रहा। इतने में मैया एकदम सुन नहीं रही, वो तो जोर से दधी मंथन करती हुई गा रही है एकदम तन्मय होकर। कीर्तन हो तो ऐसा ही किसी की सूझ बूझ, इसलिए यह कीर्तन भगवान को भी आकर्षण कर, इसलिए कृष्ण को आकर्षण किया पलंग पर सोए हुए। अब जहां जो कीर्तन कर रहा है उसके पास में उनको जाना है। भगवान कहाँ रहते हैं, नाम तिष्ठामी योगी नाम नाच, और जत्र हमारे भगवान के भक्त लोग गाते हैं वहीं पर आप कीर्तन करेंगे जरूर आ जाएंगे। इसलिए कीर्तन करनी है तन्मय होकर के। हम कीर्तन करते हैं तो देखते हैं कि ये लोग कहेंगे ये अच्छा गा, महाराज जी अंत तक बोलते दे जैसे बहुत अच्छा ताली बजा रहे, वहां नहीं एकदम तन्मय हो, कृष्ण ही सुन रहे हैं बस। वहां से कृष्ण चले किंतु उतर नहीं पा रहे, विश्व ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर के उछाल दिया, गोवर्धन पर्वत को समूल ही उखाड़ करके रख लिया, 7 दिनों तक एक कानी अंगुली पर रख लिया, और आज वो अपनी पलंग से उतर नहीं रहे। बतलाओ यही उनकी लीला है, किसी तरह से पेट के बल उतरे और दोनों आंखों से ऊं करते हुए कुछ आंसू भी गिर रहे हैं और कुछ ऐसे सूखे भी रो रहे हैं। अब वो कज्जल यहां से निकला हुआ और रोना का थोड़ा सा क्या हुआ, पूरा एकदम काला हो गया है और काला होकर के यहाँ से बना, एक तो काला और काले के ऊपर में ये काला, एक तो नीम करेला अपने आप और नीम चढ़ा करेला हो तो क्या करेगा, तो ऐसे ही कृष्ण काले और एकदम काला है, उसमें भी नंगे हैं काले सब, उसमें भी एक सौंदर्य निखर करके आ रहा है, जो नहीं देखेगा उस चीज को नहीं समझेगा। इसलिए एक कवि वर्णन करते हैं, भक्त ओ नमामीश्वरम सचिदानंद लसत कुंडलम गोकुले विराजमान जसोदा भियोलू खला धाव। ओ आप ऐसे ही रोते रहे और जसोदा जी ने अपनी कमर को बांध दिया, यही रूप हमारे हृदय में सब समय। लोग कहते हैं अरे भाई तुमको दया नहीं थी आती, इसको ऐसे ही बांध करके सब समय रखना चाहता है, हाँ जरूर, मैं तो इसको अपने काले अंधकार वाले कारागार में बंद करके रख दूंगी, ये कभी ना निकल सके हमारे हृदय। तो ये जो यशोदा मैया गाने लगी और वो कीर्तन करने लगे, वहां से चले निकट में आते जाते हैं, उनके रोनी का आवाज बढ़ता जाता है। रोना कैसा है, बदनम मधुरम रोदनम मधुरम, रोदन भी बड़ा मधुर, उनका देखना भी मधुर, उनकी गोपियां भी मधुर, उनकी मथुरा भी और वृंदावन भी मधुर, उनका सब, उनका देखना रोना हंसना सभी कुछ मधुर। तो वहां से किसी प्रकार से निकट में आए और उनका दधि मंथन पकड़ लिया और एक हाथ से उनके केश पकड़ लिए और कहा जे मैया, उसने कहा जी कौन आ गया, जसोदा मैया, फिर करके देखिए तो कन्हैया है, बस प्रेम उमड़ पड़ा और बच्चे को लेकर के गोदी में बैठाया, दधि मंथन बंद कर दिया और अपना स्तन उनके मुख में दिया और उसको ढक दिया। और भाव कैसे आए, इसी को कहते हैं भक्ति। रस कैसे बनता है, पानी है, नींबू है, शरबत चीनी है, और सब चीजें हैं, केवड़ा है, गंध है, ये चीजें तो है, किंतु किसी को बनाना आता है किसी को नहीं बनाने आता, जानने से ही नहीं होगा कितना किसमें कितना चट पड़ेगा। एक किलो चीनी में 15 किलो पानी डाल दिया तो होगा, और 10 किलो चीनी में 1/6 पानी मिला दिया और उसमें 50 नींबू उसमें निचोड़ दिए तो ये बनेगा। रस का भी तरीका होता है, जो सुधा जी को ये मालूम था, इसलिए उनके भाव विभाव अनुभाव सात्विक संचारी व्यभिचारी सभी जितने भी भाव थे एक साथ में उदित हुए, वो सिद्ध भक्तों को होगा, साधारण लोगों को नहीं। आंख से प्रेम के आंसू छा गए किंतु वो गर्म नहीं है, कैसे है, ठंडे आंसू, वो प्रेम के आंसू है, ये ठंडे आंसू है। और सारी शरीर में रोमांच हो गया जब छूती है अपने बेटे को और प्रेम से आंखों से आंसू आ जाते हैं, ये संचारी भाव है। बेटा क्या है, ये विषय है प्रेम का, खुद क्या है मैया, ये क्या है
प्रेम का आश्रय,
हैं
प्रेम का आश्रय,
ये विभाव, किंतु विषय कृष्ण है और यशोदा मैया आल आश्रय है। और इस तरह से अनुभव साथ जितने रस की सामग्री है इसमें आ गई, यदि इतना होगा तो हमारे भी ऐसे होगी हरी कथा सुन करके अथवा कृष्ण को या किसी को देख करके, और नहीं होने से नहीं होगा, धपका रहा है। ये होता है किसको, जो भाव भक्त होते हैं उनको होता है। इसलिए भागवत में बतलाया दिगम कल बतो कलितम फल मुखमुतम पिवत भागवतम रसम मालयम हो रहो। ये तो रसिक भक्त जो है मुक्त महापुरुष है उनके लिए, सुखदेव गोस्वामी नारद और इन लोगों के लिए, गोप गोपियों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है। हनुमान जी को सुना होगा ना, सब समय रोमांचित और पुलकित होकर के क्या करते हैं, नाचते रहते हैं, हाथ में वो ले लेते हैं और तो ये सब भाव है। यशोदा मैया उसी तरह से कर रही है, आया और उसको मंथनी पकड़ लिया और ये देखा, फिर उनको दूध पिलाने लगी। अब कुछ बातें हुई, आज यही तक रहे, 8:30 बज गया है, समय हो रहा है, घंटी बज गई है। बहुत प्रणाम, आगे की बात अब कल बतलाएंगे। मैं कल रामायण की बात कहना चाहता था, इसको जल्दी से समाप्त करके रामायण कुछ कल और परसों रामायण की कुछ प्रेममयी बातें बतला।
हरे Thus ends the class on the 21st of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.